समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
चिर सजग आंखें उन्हीं दी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा की और ये हमें ये याद दिलाती हैं कि जब तक हम अपने लक्ष्य को पूरा ना कर लें तब तक कोई भी हमें अपने रास्ते से हिला ना सके। अक्सर हम जब कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, कभी कभी हम हताश हो जाते हैं और कभी हिम्मत हार जाते हैं। पर सवाल ये है कि हमारी हताशा हमारे सपनों से बड़ी है या हमारे सपने जो हमें ये सिखाते हैं और जीने की राह बताते हैं। तो श्रोताओं, आज की सुबह की शुरुआत इस संकल्प के साथ करें कि चाहे कुछ भी हो, आप अपने सपनों के लिए जीना नहीं छोड़ेंगे और अपने संकल्पों के लिए प्रयासरत रहेंगे और वो काम जरूर करेंगे जो आपको जिंदा रखता है, आपके अंदर उत्साह और खुशी को बनाए रखता है। इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। वेल, यू आर ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, सो स्टे ट्यून लिसनर्स। वील बी प्रोवाइडिंग यू द लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, वील ऑल्सो गिव यू मेट्रो सिटी अपडेट्स एंड वील एक्सप्लोर टूडेज हिस्ट्री अलॉट इन डिटेल। टूडे इज 12th of April 2025। ऑल यू हैव टू डू लिसनर्स इज टू कीप लिसनिंग टू अस इन दिस ब्यूटिफुल मॉर्निंग। दिस इज मी शगुन चोपड़ा एंड आकर्षिता। We'll begin with the headlines first, shall we?
जी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि व्यापार समझौते की समय सीमा पूरी करने के लिए राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कल नई दिल्ली में 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापार समझौते दोनों पक्षों के लिए लाभदायक होने चाहिए। श्री गोयल ने वैश्विक व्यापार को नया आकार देने में विशेष रूप से अमेरिका जैसे विश्वसनीय भागीदारों के साथ भारत के संभावित अवसरों का भी उल्लेख किया। श्री गोयल ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हुई प्रगति की बात स्वीकार की, लेकिन उन्होंने इसमें आने वाली चुनौतियां विशेष रूप से जलवायु नियमों से जुड़े गैर व्यापार मुद्दों की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि भारत उन देशों के साथ द्विपक्षीय साझेदारी करने के लिए अच्छी स्थिति में है जो पारस्परिक विश्वास और निष्पक्षता को महत्व देते हैं।
The center has operationalized a dedicated global tariff and trade help desk to assist stakeholders in navigating emerging trade issues. The Commerce and Industry Ministry in a statement said that the help desk will look into issues relating to import and export challenges, import surges or dumping, logistics or supply chain challenges, financial or banking issues, and regulatory or compliance issues, among others. The help desk will also collect and collate trade-related issues concerning with other ministries, departments and agencies of central government and state governments. It will also coordinate to seek their support and provide possible resolutions. The ministry added that export-import community may submit information on the DGFT website and submit information relating to their issues. They can send email on dgftedi@nic.in with the subject header Global Tariff and Trade Help Desk, or can also call the toll-free number at 1-800-111-550. The Department of Commerce and DGFT are actively tracking developments in global trade, particularly in relation to tariff changes, import surges and export-related challenges.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की आधिकारिक यात्रा के बाद कल रात नई दिल्ली लौट आई। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय बैठकें की। श्रीमती मुर्मू स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के आमंत्रण पर स्लोवाकिया गई थी। पिछले 29 वर्षों में किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये स्लोवाकिया की पहली यात्रा थी। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के पहले चरण में पुर्तगाल गई। ये यात्रा ऐसे समय में हुई जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत हो रही है। इस दौरान उन्होंने पुर्तगाल के शीर्ष नेतृत्व के साथ विचार विमर्श किया तथा स्थानीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत की।
The Information and Broadcasting Ministry has announced the winners of the theme music competition, one of the 32 challenges being held as part of the WAVE Summit 2025. The first World Audio and Video Entertainment Summit, which is WAVES 2025, is scheduled to be held in Mumbai from 1st to 4th May this year. Six winners were chosen from hundreds of entries received from across the country. A distinguished jury selected the winners after a rigorous evaluation of their originality, musicality and alignment with the WAVES theme. For music and dance, India's vibrant rhythms from classical performances to contemporary beats.
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद रोधी सहयोग की सराहना की है। मुंबई आतंकवादी हमलों के प्रमुख साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण के बारे में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में उन्होंने कहा कि इन हमलों की पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए ये एक बड़ा कदम है। श्री रूबियो ने अपने एक पोस्ट में कहा था कि अमेरिका भी 2008 मुंबई आतंकी हमलों में मारे गए 6 अमरीकी नागरिकों सहित 166 लोगों को न्याय दिलाने की मांग करता रहा है।
We have another international update. Iran and the United States will begin crucial talks in Oman today to reach a new nuclear deal in an effort to ease tensions and avert another conflict in the West Asia. The Iranian delegation will be led by country's Foreign Minister Abbas Araghchi, while U.S. Envoy Steve Witkoff will represent the American side. Omani Foreign Minister Badr al-Busaidi will act as intermediary. Meanwhile, U.S. President Donald Trump has given Iran a 2-month deadline to accept a deal that will lead to Iran shrinking its nuclear footprint or eliminating its program altogether. On the other hand, Iran's foreign ministry spokesperson Ismail Baghaei in a social media post said that Iran is giving diplomacy a genuine chance and U.S. should value this decision formed despite their prevailing confrontational hoopla. Now we'll give you the sports updates. In IPL T20 cricket, Kolkata Knight Riders defeated host Chennai Super Kings by 8 wickets at their home ground, M.H. Chidambaram Stadium in Chennai last night. And today, Lucknow Super Giants will host Gujarat Titans in Lucknow from 3:30 p.m. While in the second clash of the day, Punjab Kings will face home team Sunrisers Hyderabad in Hyderabad. This match will begin at 7:30 p.m.
आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें और अब चेन्नई की खबरों के साथ हैं शगुन।
यस आकर्षिता, बिगिनिंग विद चेन्नई हियर। अ स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट्स प्लान टू वाइडन अ 900 मीटर रोड कटिंग अक्रॉस द इकोलॉजिकली फ्रेजाइल उदियूर लगून नेक्स्ट टू कुवतूर ऑन ECR हैज बीन स्टेड बाय द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हियरिंग अ प्ली बाय एनवायरमेंटलिस्ट के सरवनन एंड एम युवादीबन। A bench comprising Judicial Member Justice Pushpa Satyanarayana and Expert Member K. Satyagopal ruled that the road was built, which was without CRZ clearance in 2014. It obstructs tidal flow and harms biodiversity in the protected CRZ-1B and CRZ-4B zones. The tribunal also halted new expansion work carried out on the stretch. The stretch cuts across the lagoon to facilitate traffic between the Kuvatur area near ECR and Cheyur village on the other side. We have another update from Chennai here. The Tamil Nadu Power Distribution Corporation has instructed field officers to reject new and pending applications for free electricity service to farming and allied activities if the applicant already has an off-grid solar-powered pump set for irrigation. Even as the state government has provided 1.69 lakh free service connections to farmers since 2021, around 3 lakh farmers are awaiting the free agri service with seniority extending as long as 10 years. Over to you, Akarshita.
Ji, to aap khabre Delhi se. हनुमान जयंती के कारण आज सुबह 7 बजे से शहर के विभिन्न स्थानों पर यातायात प्रतिबंध और परिवर्तन लागू रहेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि इस दौरान आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास एसपीएम मार्ग और रिंग रोड जैसे प्रमुख मार्ग प्रभावित हो सकते हैं। पुलिस ने बताया है कि पुराना लोहे के पुल और जीपीओ चौक समेत अन्य स्थानों पर विभिन्न जुलूस और कार्यक्रमों के कारण यहां यातायात परिवर्तित किया जाएगा। वहीं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कल शराब की सप्लाई और रेगुलेशन पर महालेखा परीक्षक सीएजी रिपोर्ट 20 अप्रैल तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 30 अप्रैल तक सभी सीएजी रिपोर्टों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। श्री गुप्ता ने ये निर्देश आज विधानसभा सचिवालय में सीएजी की रिपोर्टों पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए। नीति आयोग ने कल मोटर वाहन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी सशक्त बनाना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में भारत के मोटर वाहन क्षेत्र का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। इसमें अवसरों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया तथा वैश्विक मोटर वाहन बाजारों में भारत को एक प्रमुख देश के रूप में स्थापित करने के लिए रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक मोटर वाहन निर्माण लगभग 9 करोड़ 40 लाख यूनिट तक पहुंच गया। भारत लगभग 60 लाख वाहनों के वार्षिक निर्माण के साथ चीन, अमेरिका और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक मोटर वाहन निर्माता बन गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इच्छुक विद्यार्थी स्नातक, पीजी, पीजी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट अंतिम तिथि तक पाठ्यक्रमों के फॉर्म भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदक 14 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अपने आवेदन पत्र में सुधार कर सकते हैं। जामिया के कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ ने बताया कि अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि देश के दूर दराज क्षेत्रों के आवेदकों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और उन्हें आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म प्रवेश पोर्टल admission.jmi.ac.in पर उपलब्ध है। पूर्वी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दिल्ली पुलिस द्वारा जन सुनवाई की जाएगी। इन क्षेत्रों में मधुविहार, मयूर विहार, लक्ष्मीनगर और कल्याणपुरी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के पूर्वी जिले के उपायुक्त ने जनता से अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव अधिकारियों के सामने रखें। वहीं भारतीय संस्कृति, कला और भक्ति में अयोध्या के महत्व को दर्शाने के लिए नई दिल्ली के जनपथ स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कल से अयोध्या पर्व 2025 मनाया जा रहा है। इस 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव में भक्ति, शास्त्रीय परंपराओं और संवाद का संगम मौजूद है, जिसमें देश भर के संत, सांस्कृतिक विचारक, नीति निर्माता, विद्वान और कलाकार एक साथ भाग ले रहे हैं।
Now let's give you the updates from Hyderabad. In Telangana, at least 22 members of the outlawed CPI Maoists surrendered before the police in Mulugu district yesterday. The surrendered include 3 area committee members, 1 party member and 18 members of the Revolutionary People's Committee of the outfit. A release stated that the 3 surrendered area committee members are Madhavi Masa, native of Mulugu district, while M. Jogaram, alias Joga, and T. Jogapuvarthi are natives of Chhattisgarh. I have another update from Hyderabad here. The Telangana state government has appointed retired High Court Judge Justice Shamim Akhtar as the chairperson of the State Human Rights Commission. In a notification, the government announced the appointment for a term of 3 years with effect from the date on which he assumes charge of his office or until he attains the age of 70 years, whichever is earlier. It may be known that Justice Shamim Akhtar headed the one-man commission constituted under the Commission of Inquiry to study sub-classification within the Scheduled Caste Reserve category and make recommendations to the government in October last year. Over to you, Akarshita now.
और अब खबरें मुंबई से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल कोंकण रेलवे के सामने आने वाली कई समस्याओं पर प्रकाश डाला और केंद्र सरकार से कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन को भारतीय रेलवे में विलय करने का अनुरोध किया। वे मुंबई में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि वर्तमान में ये केवल एक निगम है और इसलिए इसे लाइनों के दोहरीकरण और अन्य बुनियादी ढांचे के मामले में विकास और विस्तार के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की और उसका स्वागत किया। उन्होंने साजिशकर्ता को भारतीय न्यायिक प्रणाली का सामना करने के लिए भारत लाने के लिए मुंबईकरों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं उन्होंने निर्देश दिया है कि शहरी परिवहन व्यवस्था के लिए ई ट्रांजिट एक अच्छा विकल्प है और अधिकारियों को इसके आर्थिक पहलू की जांच कर इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। श्री फडणवीस मुंबई के पिंपरी चिंचवड़ महानगर क्षेत्र में पायलट आधार पर ई ट्रांजिट शुरू करने के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार के वित्त विभाग ने कर्मचारियों को देय वेतन के शेष 44% को कवर करने के लिए 120 करोड़ रुपए की तत्काल रिहाई को मंजूरी दे दी है। नवनियुक्त एमएसआरटीसी के अध्यक्ष प्रताप सरनाइक ने कल राज्य सचिवालय में प्रधान सचिव सौरभ विजय के साथ बैठक के बाद निर्णय की घोषणा की। वहीं महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण विभाग ने मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक को बोरीवली में मैंग्रोव भूमि के फिल्म शूटिंग के लिए उपयोग के बारे में शिकायत की जांच करने के लिए कहा है। पर्यावरण विभाग के अवर सचिव विशाल मद्दी ने यह निर्देश 23 फरवरी को पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया से प्राप्त कर ईमेल शिकायत के बाद जारी किया था।
Focusing now on Bengaluru, listeners, let me tell you about Lisantha Spring Festival. Organized by International Flower Auction Bangalore Limited, it is being celebrated in Bengaluru to familiarize the new cut flowers in India. It is a thornless, this particular flower that I'm talking about, Lisanthus. It is a thornless, long-lasting and highly aesthetic cut flower with superior vase life. Lisanthus provides farmers an opportunity to uplift their social and economic status. The flower is ideal for event decor, florist and bouquet creation. As part of the festival, a workshop on floral arrangement techniques and post-harvest handling of Lisanthus will be conducted. A technical presentation on the cultivation of this particular flower will also be held especially for the farmers. A Japanese company, Sakata, is sending its experts to share their expertise in advanced cultivation techniques, innovative breeding practices, post-harvest technologies, and effective marketing strategies. And over 20 floral arrangements will be displayed during the event.
Aur ab khabrein Kolkata se. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 16 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मौलवियों, इमामों और मुअज्जमों के प्रतिनिधियों के साथ वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा के लिए एक बैठक में भाग लेंगी। यह बैठक कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में होगी। बैठक में अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। और अब महानगरों के मौसम का हाल। सबसे पहले दिल्ली के मौसम का हाल। आज दिल्ली में गरज और बिजली के साथ तेज बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। और शगुन, हमने रात में देखा था कैसी आधी तूफान आई थी और दिल्ली का एकदम मौसम ही चेंज हो गया था।
जी, आफ्टर सच सोरिंग टेम्परेचर्स, वेरी हाई टेम्परेचर्स, सच वार्म टेम्परेचर्स, द टेम्परेचर जस्ट यू नो चेंज, द वेदर जस्ट कम्प्लीटली चेंज।
जी, वहीं मुंबई में आसमान में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 34 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। तापमान 33 और 25 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।
Well, Chennai, Bengaluru and Hyderabad, three of these particular cities, they will have cloudy sky. Starting with Chennai, it is expected to have a partly cloudy sky with possibility of moderate rain and thunderstorm. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum will be around 37 degrees. Bengaluru is expected to have cloudy sky, generally cloudy sky with light rain will be there. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Now, Hyderabad, it is expected to have, again, a generally cloudy sky and there is a possibility of rain or thunderstorm or dust storm here as well. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 39 degrees Celsius. Now, listeners, we'll explore today's history. Let's take you way back in time. In the year 1482, Rana Sanga, a prominent Rajput ruler who lived in India during the late 15th, early 16th centuries, was born. Now, in the year 1621, Sikh Guru Tegh Bahadur was born. Now talking about the year 1927, the British cabinet supported giving women 21 years of age the right to vote.
और आज के ही दिन 1991 में खाड़ी युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हुआ था और आज के ही दिन 1998 में गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए।
अगर शीतल, लेट्स गो अ लिटिल बैक। इन द ईयर 1955 द पोलियो वैक्सीन इट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर जोन्स एक्ट वाज डिक्लेयर्ड सेफ एंड इफेक्टिव। In the year 1961, the Soviet Union sent the first man, Yuri Gagarin, into space. Now, in the year 1978, to commemorate the completion of 125 years of Indian Railways, the country's first double-decker train, Sinhagar Express, was run from Victoria Terminal in Bombay to Pune, Mumbai.
और आज के दिन ही 2007 में एयरलाइंस जेट ने एयर सहारा को खरीदा था और 2014 में आज के दिन ही मशहूर गीतकार गुलजार को वर्ष 2013 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2008 में आज के दिन ही भारतीय मूल के ब्रिटिश उद्योगपति और सांसद लॉर्ड स्वराजपाल के स्वामित्व वाले केपेरो समूह ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में मोटर वाहन के पुर्जे बनाने की 3 इकाइयों को लगाने का फैसला किया था। और अब बात उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज दक्षिण भारतीय सिनेमा के अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले कन्नड़ फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार की पुण्यतिथि है। उनका वास्तविक नाम सिंगनालुरु पुत्तुस्वामय्या मुथुराजु था। राजकुमार ने 1950 और 1960 के दशक में कन्नड़ सिनेमा में काम किया। अन्वेषण उनकी पहली फिल्म थी। वीरपुत्र, गुरुदेव, अधेरा, सत्यवान और सावित्री आदि उनकी प्रमुख फिल्में थी। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं कन्नड़ भाषा में उनका ये हिट गाना। Now, moving on, let's talk about one astronomer, French astronomer. I'm talking about Charles Messier. Well, he published an astronomical catalogue consisting of 110 nebulae and star clusters. This came to be known as the Messier objects and referred to with the letter M and their number between 1 and 110. आज हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार गुलशन बावरा की जयंती है। उनका मूल नाम गुलशन कुमार मेहता था। उन्हें बावरा का उपनाम फिल्म वितरक शांति भाई पटेल ने दिया था। वे पहले रेलवे में कार्यरत थे, लेकिन उनकी कल्पना की उड़ान ने उन्हें फिल्म उद्योग के आसमान पर स्थापित कर दिया। अक्सर पंजाब से आई गेहूं से लदी बोरियां देखा करते थे और वही उनके मन में कभी ना भुलाई जा सकने वाली पंक्तियां बन गई। और शगुन, आप गेस कर सकती हूँ कौन सा गाना रहा होगा जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। आइए सुनते हैं ये गीत।
ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती,
मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।
इस गीत ने उन्हें सन 1967 में सर्वश्रेष्ठ गीत का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। 70 की शुरुआत में सबसे पहले 1974 में फिल्म हाथ की सफाई में लता मंगेशकर द्वारा गाए उनके गीत तू क्या जाने बेवफा और वादा कर ले साजना बेहद लोकप्रिय रहे। फिर 1975 में आई फिल्म जंजीर में उनके गीत दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए और यारी है ईमान मेरा ने पूरे देश में धूम मचा दी। इन दोनों ही फिल्मों का संगीत कल्याण जी और आनंद जी ने दिया था। आइए सुनते हैं उनकी फिल्मों का ये गीत।
दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए नजर चाहिए।
जवानी में जवानी के सहारे हो जवा मेरे मेहरबा, मुझे तू ही तू हम सफर चाहिए हम सफर चाहिए।
दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए।
तुम्हें याद होगा, कभी हम मिले थे मोहब्बत की राहों में, मिलके चले थे।
Now let's talk about a poet of Malayalam literature, social reformer and also philosopher Mahakavi Kumaran Asan. Well, he has to initiate a revolution in Malayalam poetry during the first quarter of the 20th century, and he transformed it from the metaphysical to the lyrical, and his poetry is characterized by its moral and spiritual content, poetic concentration and dramatic conceptualization as well. Let me talk about another poet and literary critic here, Hira Pathak. Well, she was a professor of Gujarati as well. She has been focusing on Gujarati poet and literary critic. Let me name two of her critically acclaimed works here, Kavya Bhavan and Vidrati. And another work, it's Sanskrit poetry here, Gavaksha Deep, which was published in 1979.
आज भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और हिंदी फिल्मों के गीतकार केदार शर्मा की जयंती है। उन्हें बॉलीवुड में ऐसे फिल्मकार के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने राज कपूर, भारत भूषण, मधुबाला, माला सिन्हा को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केदार शर्मा ने कई फिल्मों में अपने अभिनय से भी दर्शकों का दिल जीता। इन फिल्मों में इनकलाब, पुजारिन विद्यापति, बड़ी दीदी, नेकी और बदी शामिल हैं। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म देवदास से उनका ये गीत।
अब दिन बीतत नाही दुख के, अब दिन बीतत नाही
दुख के। वर्ष 1934 में प्रदर्शित फिल्म सीता बतौर छायाकार केदार की पहली फिल्म थी। वर्ष 1936 में प्रदर्शित फिल्म देवदास केदार शर्मा की सिनी करियर की अहम फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में वे बतौर कथाकार और गीतकार की भूमिका में थे। फिल्म हिट रही और केदार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आदि से सम्मानित किया गया।
Now let's talk about a jazz musician, band leader and composer. I'm talking about Herbert Jeffrey Hancock. His best known compositions, they include Cantaloupe Island, Watermelon Man, Maiden Voyage. And for you listeners, we have another song here by him, Sun Touch.
आज भारतीय शास्त्रीय गायक ऋत्विक सान्याल का जन्मदिन है। प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल ध्रुपद गायन के सशक्त हस्ताक्षर हैं जिन्होंने 60 के दशक में लुप्त गायन शैली को एक नई ऊंचाई प्रदान की। प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल ने डागर घराने के विख्यात वीड़ा के वादक उस्ताद जिया मुहिद्दीन डागर और गायक उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर से संगीत की शिक्षा ली। भारत सरकार ने उन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया। आइए सुनते हैं उनका ये शास्त्रीय गायन।
Let me talk about another musician now, Herbert Boutros Khoury. Well, he's professionally known as Tiny Tim, musician and musical archivist. And listeners, let's hear this wonderful song in his voice now. Listeners, well, let me also tell you, Tulsi Gabbard's birthday today. It's Tulsi Gabbard's birthday. Well, politician and military officer, she has been serving since 2025 and this year as well as the 8th Director of National Intelligence.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और शगुन को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।